ओम शांति। जब हम अव्यक्त फरिश्ता शब्द सुनते हैं, कौन सामने आता? ब्रह्मा बाबा, जो नंबर वन फरिश्ता बने और हम सब के लिए राह दिखाई कि मानव से फरिश्ता कैसे बन सकती। और मेरा भाग्य है कि बाबा को न सिर्फ देखा परंतु बाबा से बहुत सारे वरदान भी प्राप्त किए। और जब 1968 में तीन बारी बाबा के साथ मुलाकात रही, जून मास, फिर अक्टूबर मास, फिर दिसंबर मास और फिर जनवरी मास में तो बाबा उड़ के गए, तो उन समय की बातों को मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा हमारे लिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल रहे कि हम भी साधारण मनुष्य नहीं परंतु बाबा के बच्चे बनने के बाद हम भी ऐसे अव्यक्त फरिश्ता बन सकते। तो साकार में होते भी बाबा वो अंतिम वर्ष तो बिल्कुल अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण किया था, तो साकार में सेवाएं करते भी वही हरेक को अनुभव होता था। तो उसमें मैं कहेंगी कि पहला कदम तो ये है कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाएं, अथवा हम नया जन्म जो ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा लिया हुआ है वो हम अनुभव करें कि वो पवित्र जीवन, वो सुखदायी जीवन, वो श्रेष्ठ जीवन किस प्रकार से होती। और मुझे लगता है कि हर एक जो भी बैठे हैं अपने को तो बीके कहलाते ही हैं। कितने बीकेज हैं वो तो लाखों के अंदाज में अभी हो गए, परंतु लाखों के अंदाज में से कौन है जो अपने को राजयोगी सचमुच दिल से कहते हैं कि हाँ हम सचमुच राजयोगी हैं। तो जो राजयोगी की स्टेज है वही एक ऐसी स्टेज है जिसका जितना हम ध्यान रखते हैं उतना ही फिर जल्दी से जल्दी हम अव्यक्त रूप अपना भी धारण कर सकते। आप सोचो कि आप जब कहाँ पर भी शॉपिंग करने जाते हैं, वैसे तो ब्राह्मणों की शॉपिंग तो आजकल बहुत लिमिटेड हो गई है, परंतु जिस समय पहले जाते थे या दूसरों को देखते थे कि वो शॉपिंग में जाते हैं तो सारे लाइन में वस्त्र टांगे हुए होते और फिर वो आपको कहते हैं कि आप चुन करके लो कि अब आपको कौन सा वस्त्र धारण करना है। तो आप कौन सा चुनेंगे जो आपको पसंद आए? तो बाबा भी हमें कहते हैं कि 83 जन्म के वस्त्र आपके सामने है, परंतु उन सब एक एक वस्त्र की अलग अलग निशानियां और उन सब का तो अब त्याग किया है। अब इस 84वें जन्म में आपको कौन सा वस्त्र धारण करना है? बाबा बहुत सुंदर भाषा में, अव्यक्त भाषा में कहते, आपका चमकीला ड्रेस बाबा के पास वतन में रखा हुआ है। तो क्या हम वो अव्यक्त वतन का अनुभव करके वो अपना चमकीला ड्रेस धारण कर सकते? चमकीला मतलब प्रकाश का बना हुआ। आज भी संसार में जहाँ पर भी बहुत प्रकाश होता है, ध्यान वहाँ जाता है कि हम जाकर देखें कि क्या है। तो आप सोचो जब इतने सब बाबा के बच्चे फरिश्ता बन करके बाहर सेवा पर जाएंगे और सबका रूप वो चमकीला ड्रेस वाला रूप होगा, वो फरिश्ता लाइट का स्वरूप होगा, हड्डी मांस का नहीं परंतु लाइट का प्रकाशमय स्वरूप होगा, तो हर एक जरूर कहेंगे कि हाँ ये तो कोई फरिश्ते हमारे संसार में आ गए हैं, तो हमें अब मधुबन में जितने भी दिन हैं, अभी भी कोई को एक दिन दो दिन तीन दिन हो चुके, बाकी भी कल बाबा के बाद शायद कहीं जल्दी भाग के जाएंगे, फिर भी एक दिन तो है या शायद दो तीन दिन भी हो, परंतु जितना आप इस बात का प्रैक्टिस करेंगे कि मैं अपना वो अव्यक्त फरिश्तानी रूप धारण करूं, वही चमकीला ड्रेस मैं पहनूं, तो आपको यहाँ भी वो फरिश्ता स्वरूप का बहुत आनंद रहेगा, परंतु साथ ही साथ आप अनेक आत्माओं को भी वही साक्षात्कार करा सकेंगे। कौन चाहता है कि हम यहाँ प्रैक्टिस करें अपने अव्यक्त फरिश्तानी स्वरूप का? वाह, इतने सब बाबा के बच्चे फरिश्ता रूप धारण करके जाएंगे तो अवश्य जहाँ पर भी आप रहते हो, जिनों के साथ भी आपका कार्य व्यवहार चलता है, वो भी आपको यही अनुभव करेंगे और आपसे अवश्य पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, आपने ये जो थोड़े दिन छुट्टियाँ ली थी आप कहाँ पर गए थे, तो आपका चेहरा आपका चलन ही उन्हों को बताएगा कि ये कोई विशेष आत्माएं है। परंतु कोई भी बात में प्रैक्टिस करनी होती है, छोटी बात हो बड़ी बात हो। और फिर बाबा ने बताया है कि प्रैक्टिस से जो आपको अनुभव होगा, आप अनुभव की अथॉरिटी बन करके यहाँ से जाएंगे। और अनुभव की अथॉरिटी कोई टोपी नहीं होती, कोई उसका स्पेशल बैज नहीं होता, परंतु आपके चेहरे द्वारा ही वो समझ सकेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो अपने अनुभव की शक्ति के आधार पर कह रहे हैं। तो कैसे वहाँ तक पहुँचे? पहले तो आप सोचो, योगी के लिए कौन सा गायन आता? योगी के लिए गायन आता कि उनों की कर्म इंद्रिया बड़ी शीतल, एक एक अंग शीतल, जिस द्वारा अनेक आत्माओं को कुछ सुख की प्राप्ति होती। साधारण मनुष्य और फरिश्ते का कॉन्ट्रास्ट आप सोचो, साधारण मनुष्य के आंखों में कभी प्रेम होगा, कभी जोश होगा, कभी कुछ और नफरत होंगी, भिन्न भिन्न वैरायटी वैरायटी उनों के मूड चेंज होते जाएंगे, उनों के आंखों द्वारा वो मूड कभी पता चलता रहेगा। परंतु राजयोगी सर्व कर्म इंद्रियों जीत, जिन्होंने हर अंग को पावन बनाया है योग के आधार से, जिन्होंने एक एक इंद्रियों पर जीत प्राप्त की हुई है, उनों का ऐसे बदलता स्वभाव नहीं, परंतु राजयोगी स्वराज अधिकारी उनों के नैनों से सदा वो प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति वही दृष्टि से नजर आती रहेंगी और अनेक आत्माओं को उसके द्वारा सुख की अनुभूति होती रहेंगी। जैसे आज हम बाबा के सामने चाहे चित्र के सामने बैठते हैं, परंतु चित्र में भी सच्ची दिल से बाबा को याद करो, वो चित्र भी आपको नैनों से बोध बोलता है। बाबा के कमरे में जाओ, विशेष पांडव भवन की तो एक ही स्पेशलिटी है, परंतु कहाँ पर भी आप चाहे गुजरात में हो चाहे पंजाब में हो, कहाँ पर भी हो, परंतु सच्चे दिल से बाबा के चित्र के सामने बैठो, आपको बाबा के नैनों द्वारा क्या फीलिंग आती कि दिल आराम बाप मेरे दिल को जानता है, और जो दिल की बातें हैं जान करके बाबा फिर उन बातों का हल भी करता है अथवा उसका उत्तर भी देता है। तो आज तक भी किसी को भी ये अनुभव नहीं हुआ हो, वो अवश्य ही कुछ समय बाबा के कमरे में बिता करके ये अनुभव मधुबन से ज़रूर प्राप्त करके जाएं, और फिर वो अनुभव आपको कहाँ पर भी ज़रूर अवश्य ही होगा। तो एक तो हमारे हर अंग अंग से खुशबू पवित्रता की, और साथ ही साथ अनेक आत्माओं को सुख की प्राप्ति, नैनों के द्वारा, मुख के द्वारा, हमारे मुख से किस प्रकार की भाषा निकलती है, साधारण मनुष्य से भाषा है या कुछ ज्ञान युक्त भाषा है या ज्ञानी योगी आत्मा की भाषा है अथवा वरदानी भाषा है। कई बार हमें याद नहीं रहता कि हमने किसको क्या बोला, परंतु जिस आत्मा के अंदर वो सुख की अनुभूति होती वो नहीं भूलते। वो 10 वर्ष के बाद भी आपको कहेंगे कि आपने फलाने समय पर ये शब्द मुझे कहे थे, उससे मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत शक्ति मिली और मेरे जीवन में और उन्नति होती रही। और फिर ऑपोजिट भी सही है, उस समय तो आपने जल्दी में कुछ कह दिया, आपको पता नहीं चला कि किसको ऐसा तीर लग गया जो वो जख्म बाद में भी उनको दुख देता रहा, और आपको फिर कई बार वो शायद आपको न याद हो, परंतु उस व्यक्ति को जब आप मिलेंगे तो उस व्यक्ति के मन में वो ही बात आएंगी, या कई बारी वो हिम्मत रख करके आपको बता भी देंगे कि आपने ये जो बात कही थी मुझे उससे बहुत दुख हुआ, बहुत गहरा जख्म हो गया। जो हाथ का जख्म होता वो तो 2-3 सप्ताह में हील हो ही जाता, जो दिल का जख्म है वो इतना जल्दी नहीं मिटता। तो जब हम करते मन में बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा, तो मुख से हम किस प्रकार के शब्द बोलेंगे, न सिर्फ मीठे शब्द परंतु शक्तिशाली शब्द, ऐसे शब्द जिस आत्मा को और आगे के लिए जाने का कुछ हिम्मत मिले। तो हमारे मुख द्वारा भी ऐसे कुछ शब्द वरदानी बोल सदा निकलते रहे, ये हम ध्यान रखें। बाबा के हाथों ने किस प्रकार से काम किया, कभी कभी बाबा की तबीयत कुछ ऐसी होती थी जो बाबा बोल नहीं पाते थे, परंतु शिव बाबा मुरली मिस करने नहीं देते थे, और बाबा के द्वारा मुरली लिखत में आती थी, और बाबा की तो सिंधी भाषा थी तो बाबा के बहुत सिंपल शब्दों में वो डॉट्स एंड डैशेस की भाषा वो है, सहज भाषा है, जैसे शॉर्ट हैंड होती है देखने में ऐसे आती। तो बाबा के द्वारा बाबा 10 पेज 12 पेज 14 पेज की मुरलियां भी उस समय बाबा लिखत तैयार करके फिर बच्चों को देते थे कि बच्चे सुनाए। बाबा ने जो कदम जहां पर रखे उन कदमों द्वारा अनेक आत्माओं की कमाई हो गई, न केवल बाबा की कमाई हुई परंतु जो देखने वाले थे जिनको कुछ प्राप्ति हो रही थी उनों की भी कमाई होती रही। तो आप सोचो हम जहां कदम रखते हैं उसमें हमारी कुछ आध्यात्मिक कमाई हो रही है, और यही तो पहले बात तो हमारी कमाई हो, परंतु दूसरी बात जहां पर हम कदम रखते क्या अनेक आत्माओं की कमाई भी हो रही है। और बाबा के मुस्कुराहट का तो आप देखते ही हैं चित्रों में कि कितनी मीठी मुस्कुराहट, चित्रों से ये नहीं पता चलता कि बाबा की कहानी क्या थी, कितनी बातों का सामना बाबा को करना पड़ा, परंतु हम जानते हैं उसका इतिहास सभी ने सुना है कि किस तरह से अनेक बातों का सामना बाबा करते रहे करते रहे, तो भी बाबा की मुस्कुराहट बदलती नहीं। आपका चेहरा, कोई भी बात सामने आती है, क्या आप उसको स्वीकार करके बिल्कुल और सब बातों को समा कर मुस्कुरा के आगे बढ़ते हैं, या आपका फेस बदल जाता? और जब फेस बदल जाता, उसकी पहचान होती कि अंदर की स्थिति भी कुछ बदल गई है। आप अपने ही इतिहास को याद करो, कल का दिन, परसों का दिन या उससे पहले का दिन आपकी किस प्रकार की स्थिति रही? क्या आप सदा हर्षित मुख रहे, मुस्कुराते रहे, या कोई बात में आपको लगा ऐसी नहीं होना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है, और वो संकल्प आया, आपने कुछ वर्णन नहीं किया, खुद आपके चेहरे ने बता दिया, आपका चेहरा बदल गया। तो औरों ने फिर आपको बताया कि क्या हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई क्या? तो आप नहीं समझते, परंतु जो हमारे संकल्प चलते हैं वो हमारे चेहरे से औरों को तो बिल्कुल नजर आते हैं। तो हम अपनी स्थिति ऐसी बना के रखें जो हमारे सदा ही श्रेष्ठ संकल्प चलते रहे, ताकि हमारे मुख से मुस्कान कभी जाए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो हमारे लिए ड्रामा के हर सीन जो भी आती है उसमें अवश्य ही कल्याण है। आप समझते हो कि आपके लिए हर ड्रामा की सीन कल्याणकारी है? कौन समझता है कि हाँ हर सीन कल्याणकारी है? देखो, बहुत अच्छे स्टूडेंट बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो उसमें क्या है कि जब हम इस बात को याद करते हैं तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। यदि हम किस बात को अकल्याण का समझते तो उसमें जरूर ये प्रश्न आएगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो जो बाबा कहते अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प आते हैं, वो हमारी एनर्जी को खर्च कर देते हैं। आप सोचो, बूंद बूंद से हम सर्वशक्तिवान से योग लगाकर एनर्जी ले रहे हैं, परंतु फिर वो एनर्जी खत्म होने में कितना टाइम लगता? जमा होने में मेहनत लगती, ध्यान देना पड़ता, और जिस समय नल का खुला बहता जा रहा है, कितने समय में जो आपकी टांकी है वो खत्म हो जाती। तो इसी प्रकार से वो जो हमारे व्यर्थ संकल्प की टांकी हमारी खाली कर देती है, वो तो चेहरे पर भी नजर आता। तो जो बाबा कहते चेहरे और चलन से अब सेवा हो, तो आप अपनी स्थिति को ऐसी बना के रखें जो आपको टाइम न लगे। कई बार साधारण मनुष्य भी एक वर्ष दो वर्ष के बाद सोचते हैं कि हाँ ये बात से मुझे ये फायदा हुआ, उस समय पता नहीं चला, बाद में पता चला तो हमें लगा कि हाँ कुछ फायदा जरूर हुआ। परंतु एक वर्ष दो वर्ष तो साधारण मनुष्य के लिए है, बाबा के राजयोगी बच्चों के लिए कितना समय लगे? कितना समय लगे? एक सेकंड भी नहीं, एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ न चला जाए। हर संकल्प मेरा सफल हो, हर संकल्प मेरा समृद्ध हो। तो मधुबन में ये चांस है प्रैक्टिस करने का कि हमारे संकल्प की क्वालिटी समृद्ध, पवित्र, शुद्ध सदा रहे, तो ही फिर कहेंगे कि हाँ सचमुच राजयोगी है। और राजयोगी बन करके हमारे मन में ये भावना होती कि बाबा हमारे द्वारा कुछ सेवा कराता रहे, हम अपना भी भाग्य बनाए परंतु अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनता जाए। तो सेवा करते करते ये हमें लगता है कि यहाँ पर तो वाचा से, करुणा से सेवा हमारी चलती रही है, परंतु क्या इससे भी ऊपर कोई सेवा होती? तो संकल्प यही आता जो बाबा ने बताया है कि मनसा सेवा करनी है, परंतु मनसा सेवा के लिए मन इतना शुद्ध चाहिए और बहुत समय का प्रैक्टिस हो हर आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना हो। कईयों के लिए है, कईयों के लिए नहीं है, तो उसमें मनसा सेवा में मिक्सचर बातें आ जाएंगी, परंतु हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हो तो फिर हम कहेंगे कि हाँ हमारी स्थिति ऊंची बनती जा रही है, व्यक्त से अव्यक्त स्थिति। वतन में तो जब बाबा बुलाएंगे हम जाएंगे, परंतु यहाँ पर ही हमारी वो अव्यक्त स्थिति जितनी होंगी प्रैक्टिस के द्वारा, तो फिर जब बाबा का बुलावा होगा एक सेकंड में हम उड़ के जाएंगे। जब बाबा ने अपना अनुभव सुनाया, वैसे तो जो आत्मा चली जाती है वो अपना उस प्रकार से तो अनुभव डिटेल में तो नहीं बता सकती, परंतु बाबा के पास तो अनोखी सिस्टम है। तो जो 13 दिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो हर रोज भोग लगता था, तो उसमें एक दिन दादी गुलजार ने वतन में बाबा से ये प्रश्न पूछा कि बाबा अंत में आपको आपकी क्या स्थिति थी। तो बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो ये बात बताई कि पहले कर्म योग और कर्म भोग का युद्ध चला, जो दादी बाद में वर्णन करती थी कि दादी प्रकाश मणि, क्योंकि वो बाबा के साथ ही थी, तो पहले लगता था बाबा के चेहरे से कि दुख हो रहा है, दुख नहीं दर्द, दर्द हो रहा है। फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो दर्द जैसे कि समाप्त हो गया और बाबा का चेहरा एक मीठी मुस्कान का हो गया। तो उसका बाबा वर्णन कर रहे थे कि कर्म भोग और कर्म योग का आपस में युद्ध चला, परंतु कर्म योग की जीत हो गई। और सेकंड बाबा ने कहा कि कोई एक बाबा का बच्चा सामने नहीं आया, परंतु सारा ही जो परिवार है समूह रूप में बाबा के सामने था। तो वो प्यार भी था, परंतु बाबा डिटैच भी थे। और तीसरा बाबा ने बताया कि मैं बाबा को बोला, आप मुझे बुलाने चाहते हो तो बाबा मैं तैयार हूँ, और आप यदि मुझे कहते यहाँ ही सेवा करनी है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो बाबा ने ये 3 बातों का, जबकि बहुत काल का अभ्यास किया होगा, तो फिर अंत समय इन 3 बातों में भी किस प्रकार से स्थिति रही वो हम अपने आप को देख सकते कि बाबा का कहना और हमारी स्थिति। तो सवेरे सवेरे जब हम आंख खोलते पहला संकल्प किस प्रकार से आता? क्या ये संकल्प आता कि मैं फोन देख करके देखूं कि संदेश कौन से आए हैं रात्रि भर में, या ये संकल्प आता कि आज तो बहुत ज्यादा भारी कारोबार है ये देखना करना होगा, या ये संकल्प आता कि बाबा आज की रात अच्छी बीती और आप सवेरे सवेरे मुझे जगा करके और भाग्य बनाने का मौका दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए थैंक्स। तो पहला संकल्प हमारा कौन सा है उससे हमें कई बार पता चलता कि कहाँ पर हमारी रग जुटी हुई है। और जो बाबा हमें सबक सिखाते हैं कि नष्ट मोहा, तो जब मोह को हर प्रकार से अभी से ही छुट्टी करते देंगे, तो फिर अंत समय हम कहेंगे कि हाँ सचमुच आत्मा नष्ट मोहा और फिर उसके साथ साथ स्मृति लब्धा, बस उस एक की ही स्मृति। यदि आज से वो प्रैक्टिस नहीं है, लास्ट मोमेंट पर वो प्रैक्टिस की बात नहीं होंगी, जो प्रैक्टिस की हुई है वो ही हमारे सामने बात आएंगी। और प्रैक्टिस यदि नहीं की हुई है तो फिर तो अनेक डिस्ट्रैक्शंस है, अनेक बातें हैं जो बुद्धि को खींच लेते। तो हम ये देखें कि कहाँ तक नष्ट मोहा स्मृति लब्धा और कहाँ तक जब भी कोई शरीर को कुछ भी कष्ट होता उस समय हम योग बल को यूज करके उस आधार पर हम जीत प्राप्त करें। इस समय की जीत तो वो जीत नहीं है कि हम शरीर छोड़ देवे, बाबा की तो बहुत और सेवा रही हुई है, परंतु इस समय की जीत है कि जो भी बात सामने आए हम उसको जीत पाकर अपने हर्षित चेहरे को न भूलें। मैं समझती इस सभा में बहुत सारे भाई बहन ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कई दादियों को देखा है, दादी प्रकाश मणि को भी और फिर उसके बाद भी जो और दादियां हैं साथ साथ में उन्हों को भी देखा हुआ है। बाकी ये पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, परंतु हमने तो कई बार देखा, चाहे दादी प्रकाश मणि को, चाहे दादी जानकी को, चाहे दादी गुलजार को भी। जैसे दादी बड़ी दादी का पीठ का दर्द कई बार बहुत होता था, तो एक बार ऐसे था जो दादी को इतनी तकलीफ थी, जो हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिल किया दादी को, अपने ही ऊपर में हॉस्पिटल में, और दादी को पता चला कि कई बाबा के बच्चे विदेश से पहुंच चुके हैं जिन्होंने दादी से मुलाकात ही नहीं की है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। ऐसे तो पांडव भवन के दिनों में तुरंत ही हम पहुंचते थे तो जल्दी में ही दादी जी की मुलाकात होती थी, तो वो मिस कर रहे थे दादी को। तो उस समय फिर दादी ने उनको डॉक्टर्स को कहा, नर्सेस को, कि आप खटिया मेरी जहां आज वो रिसेप्शन एरिया है फर्स्ट फ्लोर पर, वहां मेरी खटिया डालो। और जो बाबा के बच्चे हैं करीब 80 थे शायद उस समय, उनको बुला लो, वो यहाँ आकर के मेरे से मिले। कमरे में तो बहुत थोड़े मिलेंगे, परंतु यहाँ सबको बुला लो, मैं यहाँ ही सबसे मिलेंगी। और दादी को उन्होंने ऊपर उठा के बिठाया था, तकिया सब तरफ था, परंतु कुछ चेहरे से पता नहीं चलता था कि दादी की तबीयत क्या है। बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि वही हमारी दादी है, वही मीठी मुस्कान है, वही नैनों के द्वारा दृष्टि बाबा की याद में दे रही है। तो क्या जब शरीर को कष्ट होता, कर्म भोग खींचता, क्या हम अपनी स्थिति ऐसे बना के रख सकते जिस समय की हम उस समय भी सेवा करते रहे और किसी को भी कुछ फर्क न लगे कि हाँ इन्हों को कुछ कष्ट हो रहा, क्योंकि आत्मा को कष्ट नहीं हो रहा, शरीर हिसाब किताब चुकतू कर रहा, आत्मा को कुछ कष्ट नहीं। तो हर बात में हम बाबा को सामने रखते हैं और बेशक बाबा को आपने साकार में नहीं देखा, परंतु बहुत यहाँ बैठे होंगे, स्पेशली जो गुजरात वाले हैं वो तो जल्दी जल्दी भागते हैं बाबा के मिलन के लिए। तो जब बाबा की पधरामनी भी होती थी उस समय भी कहीं तो शाम को आते थे और रात्र को चले जाते थे, बस बाबा की मुलाकात के लिए आते थे। तो आपको याद होगा कि बाबा की दृष्टि किस तरह से होती अथवा बाबा किस तरह से सबको हंसाते बहलाते और बहुत प्यार से हर बात स्पष्ट समझाते, जो आज तक भी वो बाबा का कार्य चल रहा। तो अव्यक्त स्थिति का हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा हुआ है, कि इस वतन की कुछ बात का असर नहीं, परंतु ऊंची स्थिति ऊपर की और उसमें एक ही भावना, बस एक ही भावना कि सबका कल्याण हो। छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, बाबा कोई बात नहीं देखते, हर एक को कुछ न कुछ प्राप्ति हो जिस आधार पर हर आत्मा का कल्याण हो। तो हम भी जो भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी हमारी ड्यूटी बनी हुई है या जो भी लौकिक हिसाब से भी हमारी जिम्मेवारी है, यदि हमारे मन में ये कांस्टेंट भावना रहती कि जो आत्मा मेरे सामने आती उसको कुछ न कुछ प्राप्ति हो हमारे द्वारा, जिससे उस आत्मा को मदद मिले, तो फिर आप सोचो कि कितना जल्दी हम भी अपना वो जो चमकीला ड्रेस हमारे लिए बाबा ने तैयार रखा है, हम उसको धारण करके फिर वतन का अनुभव कर सकेंगे। तो यदि आज से ही हमारा प्रैक्टिस है, या कई बाबा के बच्चे बैठे हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिस की हुई है कि बस इस देह का भूलकर उस वतन का हम चमकीला कॉस्ट्यूम पहनकर वतन में बाबा के साथ हम सैर करें, और वतन में ही हम अनेक आत्माओं की सेवा करें। यहाँ तो साकार में फिर भी कुछ न कुछ लिमिट आ जाती, कितनी भी बड़ी सेवा हो, कितनी भी बेहद की सेवा हो, फिर भी हर प्रकार से साकार के लिमिट्स आते हैं। वतन में आप बाबा के पास जाओ, आपको बाबा जो सैर कराएंगे वो सिर्फ घूमने का सैर नहीं होगा, परंतु आपको फीलिंग आएंगी कि आज बाबा के साथ में वतन में बाबा ने कुछ हमारे द्वारा सेवा कराई। जो एक वर्ष दादी जानकी लंदन में थी और बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक भी नहीं आ सकती थी, ग्राउंड फ्लोर में क्लासरूम और फर्स्ट फ्लोर में बाबा का कमरा और सीढ़ी भी बहुत लंबी नहीं है, परंतु दादी की तबीयत ऐसी थी जो दादी 4 बजे आकर योग में बैठती थी और सबको मालूम था यदि दादी से मिलना है वही टाइम है। तो 2 बाजू के कमरे थे तो दादी बैठ जाती थी, सभी बाबा के सामने बैठते थे। फिर जैसे ही 4:45 का गीत बजता था, सब टर्न करके दादी की तरफ आते थे, दृष्टि लेते थे और दादी 10 मिनट बोल पाती थी बस। बाकी दिन भर दादी कुछ कारोबार में नहीं, बिल्कुल साइलेंस में। तो हम दादी से पूछते थे कि दादी आप कहाँ गए, क्या किया, क्योंकि लगता था कि दादी शरीर यहाँ है परंतु आत्मा कहीं और है। तो दादी बताती थी कि बाबा मुझे कहीं ले गए, कहाँ लेके गए मुझे नहीं मालूम और किसके पास लेके गए मुझे नहीं मालूम, परंतु बाबा साथ थे और बाबा मुझे साथ रख करके सेवा करा रहे थे। तो बिल्कुल इनकॉग्निटो सेवा, जिसमें कुछ भी अपनापन नहीं कि मैंने ये सेवा की, वो बिल्कुल उसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहाँ लेके गए, किसकी सेवा की, वो हमारे पास वो कोई छाप नहीं, परंतु बाबा कहाँ लेके गए और सेवा कराई, इतना तक ही वो अनुभव, वो फीलिंग। तो ये मैंने दादी साकार में है परंतु ये अपना अव्यक्त रूप की सेवा का वर्णन करके सुना रही थी, और ये है 1982 की बात। तो दादियों का अभ्यास इन सब बातों का आप सोचो कितने समय तक उन्होंने किया। दादी जानकी साकार में रही 2020 तक, तो नियरली 40 ईयर्स दादी ने अव्यक्त वतन के सैर करना और अव्यक्त वतन से सेवा करना तब का अभ्यास। दादी प्रकाशमणि भी सेम वर्षों तक साकार में है, परंतु अव्यक्त वतन का सैर और अव्यक्त वतन का अनुभव, और उसमें सिर्फ घूमना नहीं परंतु सेवा, अनेक आत्माओं की सेवा, उनको किसको टच हो रहा है, किसको कुछ प्रेरणा मिल रही है। आज ही किसने मुझे बहुत अपना अच्छा अनुभव सुनाया, एक विदेशी बहन ने, वो जब 11 साल की थी, तो लंबी कहानी परंतु उसको ऐसे लगा कि सामने कोई खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और मुझे बहुत प्यार दे रहा है, वो कौन है मालूम नहीं। बहुत समय के बाद जब वो एक स्थान, बाबा के स्थान पर पहुंची, तो जब बाबा का चित्र देखा तो कहा यही था जब मैं 11 साल की थी, तो मुझे इसी ने ही उस समय बहुत प्यार का अनुभव कराया। तो बाबा भी अव्यक्त रूप से किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल प्रूफ उसका देख रहे हैं। आप सोचो, छोटे से संगठन से यहाँ तक पहुँचे हैं, जो हर जगह पर भारत के कोने कोने में, परंतु विदेश के भी हर देश में बाबा का कार्य चल रहा है, बाबा अपना कार्य बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा करा रहा है। तो ये कोई मनुष्य का काम नहीं, बाबा खुद ही वतन से ये सब कुछ कर रहा। परंतु हम बच्चों को भी चांस देता है कि आप भी व्यक्त में होते, जितना जितना यहाँ की सब बातों से स्थिति को उपराम करेंगे, बाबा आपके द्वारा बहुत सुंदर अनेकों को अनुभव भी कराएंगे और आपको भी सुंदर वो अनुभव लगेगा। उसमें ऐसे नहीं है कि कारोबार छोड़ के हमें ये कुछ करना है, नहीं। अभी जो लास्ट अव्यक्त इशारे मिले हैं, उसमें आपने देखा होगा बाबा इस बात को अंडरलाइन करते रहे कि लास्ट तक भी, रात्रि को 9 बजे तक भी बाबा सेवा करते रहे, अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराते रहे। और बाबा तो जानते थे, क्योंकि दरवाजे पर खड़े हो करके बाबा ये शब्द कहते, आज बाबा बच्चों से विदाई ले रहे हैं। और 30 मिनट के बाद बाबा उड़ के वतन में पहुंच गए। तो लास्ट मिनट तक, और उसी दिन आपको ये भी कहानी का मालूम है कि बाबा कितने पत्र लिखे, एक दिन पहले भी 40 पत्र लिखे, लास्ट दिन में बाबा ने 50 पत्र लिखे, ताकि यीशु दादी को बाबा कहते उस समय, आज बाबा को अपना कर्जा पूरा करना है। तो शब्दों को तो वो सुन रही है और शब्दों में भी समझती है कि कारोबार के पत्र या प्यार के पत्र जो भी है, उसका कर्जा बाबा को चुकता करना है, परंतु ये नहीं समझ रही है कि टोटल हिसाब किताब चुकता करना है। तो कई बार हम शब्द सुनते भी हैं, परंतु उसका एक्यूरेट क्या भाव है उसके पीछे हम समझ नहीं पाते। जैसे यहाँ पर भी 15 दिसंबर 2017 जब बाबा सबके साथ मिल रहे थे, तो उस समय बाबा ने ये खास शब्द कहे कि अब बाबा समाप्ति कर रहे हैं। तो उसके बाद में, उस समय तो किसी ने बाबा से ये प्रश्न नहीं पूछा, बाबा आपका मतलब क्या समाप्ति का। उस समय बाबा ने सबकी बुद्धियों को शांत कर दिया, हम सब ने सुना, फिर बाद में पता चला, हम आपस में डिस्कस भी करते रहे परंतु तो भी समझ में नहीं आया एग्जैक्टली बाबा का भाव क्या। और मैंने तो सोचा कि जब बाबा 31 दिसंबर को आएंगे, बाबा क्लियर करेंगे उस बात को, परंतु उस दिन तो बाबा की मुरली प्यार भरी, बहुत एक एक से मुलाकात करते, यहाँ स्टेज पर बहनों ने बाबा के सामने बहुत सारे गीत गाए और बाबा भी मौज में थे, एक एक गीत सुनता गया सुनता गया, फिर लास्ट में बाबा विदाई लेके गए। परंतु उसके बाद दूसरी मुलाकात नहीं होने वाली है तो पता चला जब दादी गुलजार ने देह का त्याग किया कि जो बाबा समाप्ति कह रहे थे आज समाप्ति का दिन है, तो बाबा का भाव क्या था। तो बाबा हर बात को जानते हैं पहले से ही, और बाबा कल्याण हर बात में समझ करके फिर उस अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम पहले ये समझें कि हर बात में कल्याण है, जिससे हमारा कुछ फिर व्यर्थ संकल्प नहीं चले, न समय जाए न एनर्जी जाए, परंतु हम अपने में जमा करते रहें, तो ही फिर अनेक आत्माओं की हम सेवा, उनों का कल्याण क्या हो सकता, हम कुछ न कुछ कर सकते। हमने अपना किसी भी बात में अकल्याण समझा तो हम अन्य आत्माओं के लिए कल्याणकारी कैसे हो सकते। तो जिसके साथ हम व्यवहार में आते हैं, कभी कभी हम सोचते कुछ हिसाब किताब है ना, हिसाब किताब ही न समझे, यही समझे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा, मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिल रहा, मेरे कल्याण के लिए ये सब कुछ हो रहा। तो जब ये भावना रहेंगी तो हमारी व्यक्त से अव्यक्त स्थिति, और उसमें भी एक और बात बिल्कुल पक्की है कि जबकि कोई भी बात आती है तो उस समय हमें कितना समय लगता है फुल स्टॉप लगाने का। यदि बहुत समय लगता है फुल स्टॉप लगाने का तो हमारी तैयारी नहीं है ऊपर उड़ने के लिए। जल्दी में हम फुल स्टॉप लगाएं और वो मार्जिन कम करते जाएं, बात हुई तुरंत फुल स्टॉप तुरंत, तो उसमें हमारी स्थिति अव्यक्त सहज हो सकेंगी। और आज एक और बात विशेष ध्यान पर आई बात करते समय, कि बाबा हर एक के लिए कल्याणकारी है, सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए कल्याणकारी नहीं है, सर्वधर्म आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, जिस कारण से सबके मन में यही भावना है कि भगवान रहम दिल है, भगवान तो प्यार का सागर है, भगवान तो सदा ही कल्याणकारी है। तो हम बच्चे कभी इस तरफ होते कभी इस तरफ होते, कभी हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं इसका मतलब ये कुछ कम अच्छे हैं, या कभी हम कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं तो उस समय भी थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ ये वाले कुछ कम है। बाबा की दृष्टि में ऐसे नहीं, हाँ ब्राह्मण बच्चों का विशेष संबंध है बाबा के साथ तो उनके लिए विशेष प्यार भी है, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो बाबा कई बार कहते हैं जितना जितना जो पुरुषार्थ करता बाबा का प्यार अपने आप ही लूटता, परंतु बाबा पार्शियलिटी नहीं रखते। एक बार मुझे याद है कि दादी जी वेस्टर्न कंट्रीज का पहले वाली टूर करके वापस भारत में पहुंची थी, और सारा टूर तो बहुत ही सफल रहा था, और फिर जब हम विदेश के टीचर्स बाबा के सामने आकर बैठे उस समय, आप सोचो बाबा का कमरा जो है पांडव भवन का छोटा सा ही है, परंतु बाबा ने खास कहा था कि बाबा बच्चों से वहां पर मिलेंगे, तो हम बहुत ज्यादा संख्या तो थी नहीं, तो हम सब बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा से हम कहते हैं कि बाबा दादी बहुत अच्छी सेवाएं की, परंतु बाबा क्या रिजल्ट हमको बताएंगे टूर का। ये था 1977 की बात, जब दादी का फर्स्ट टूर विदेश वेस्टर्न कंट्रीज का, उससे पहले तो दादी ईस्टर्न कंट्रीज में जापान आदाद गई थी 1954, तो ये 77। तो उस समय बाबा ने पहले जर्मनी को देखा, जर्मनी की बहन को, और बाबा ने कहा नंबर वन जर्मनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कुछ मेहमान के रूप में आए थे थोड़ा समय पहले, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाए थे, तो दादी से उनकी मुलाकात रही। फिर बाबा यूके वालों को देख करके कहे कि यूके नंबर वन, फिर उसकी विशेषता वर्णन की, फिर गयाना वालों को देखा, फिर उनको भी नंबर वन दिया। तब तक तो हम समझ गए बाबा किसी को भी नंबर टू नहीं कहने वाला है, बाबा हर एक को नंबर वन ही कहने वाली है। तो एक एक को बाबा देख करके कहे नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बाबा हर एक की विशेषता बताएंगे। जो भी ग्रुप आएगा बाबा के साथ, खास वो खड़े होकर मिलते हैं सेवा वाले, तो नंबर वन उन्हों को देगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप आएगा, नंबर वन उन्हों को देगा। तो बाबा पार्शियलिटी नहीं रखते, हर एक के लिए सोचते हैं, ब्राह्मणों में भी नंबर वन, परंतु बाहर वालों के लिए भी बाबा यही भावना रखते, वो भी विशेष आत्माएं हैं। तो जब हम भी बिल्कुल इस पार्शियलिटी से दूर हो जाएं, बिल्कुल हमारी बुद्धि इसमें उपराम रहे कि हमें हर आत्मा का कल्याण करना है, हर आत्मा के प्रति वही भावना, वही दृष्टि रखनी है, तो आप सोचो हम कितना जल्दी में उस अव्यक्त स्थिति को धारण कर सकते। तो अभी 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और मैं थोड़ी कमेंट्री करेंगे और उस अनुसार अपनी बुद्धि को भी चलाना, तो आपको भी वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव रहे। मधुबन में बैठे सहज ही देह के संसार की बातें अलग होती, मैं आत्मा इन सब बातों से न्यारी। और इस स्थिति में शिव बाबा के साथ तुरंत ही संबंध जुटता, सागर अपने सब गुणों का प्यार, शक्ति, सत्यता, आनंद, शांति, हर प्रकार बाबा आत्मा को भरपूर करते हैं। और जितना जितना बाबा के समीप हम आते, उतना हर प्रकार से न्यारापन आत्मा, आत्मस्मृति, बाबा के प्यार की शक्ति, इस संसार की बातों से आत्मा को उड़ा देती। और इस स्थिति में बाप दादा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म आकारी स्वरूप में अपनी नैनों से एक चुंबक की तरह इस संसार से पार उस वतन में, प्रेम का वतन, प्रकाश का वतन, पवित्रता का वतन, सूक्ष्म वतन में हमें अपने पास बुलाते और आत्मा को बाबा हमें चमकीला ड्रेस देते, स्थूल वतन में स्थूल बातें रह गई और यहाँ बाबा मुझे एक फरिश्ता का कॉस्ट्यूम देते। फरिश्ते वो जो सबको भगवान का संदेश, शांति का, पवित्रता का और सुख का देवी। तो वतन में बाबा के साथ सृष्टि का चक्कर लगाना बहुत सहज है। सृष्टि में वो शांति, प्रेम, पवित्रता, सत्यता की शक्ति फैलती रहे, सब आत्माओं को वो प्राप्ति होती रहे। वतन में बाबा के संग ये बेहद की सेवा, गुप्त सेवा बाबा के संग हम करते हैं। बाबा साथ है, बाबा करण करावनहार है, तो मुझे भी भाग्य देते ये अनुभव करने का। अब बाबा इशारा देते यही चमकीला वस्त्र पहना हुआ रहे और इस वस्त्र को साकारी दुनिया में भी लेके आए और इस वस्त्र को यूज करते हुए अनुभव करें कि अव्यक्त स्थिति में रहते साकार वतन में भी हर प्रकार से कार्य को संभाल सकते। ओम शांति। तो ये 24 घंटे जो है, जब फिर बाबा का मिलन हम अनुभव करें कल, ये आप ट्राई करते रहना कि अव्यक्त स्थिति में चलना, बोलना, खाना, सब कुछ इसी स्थिति में रह के सेवा करना कैसी इजी है। ओम शांति।